एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक पर बात करने वाले हैं जिनका नाम अक्सर सुनने में आता है, खासकर जब भी अर्थव्यवस्था में मुश्किलों की बात होती है, जॉन मेनार्ड कीन्स।
हाँ, और इस बातचीत का आधार है रॉबर्ट स्किडल्सकी की किताब कीन्स। स्किडल्सकी को तो खैर कीन्स पर दुनिया के मतलब सबसे बड़े जानकारों में गिना जाता है, तो कोशिश यही रहेगी कि स्किडल्सकी के नज़रिए से कीन्स को समझें।
और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि कोई 100 साल पुराने विचार आज भी इतने रेलेवेंट कैसे हैं। आप 2008 का संकट देख लीजिए या अभी हाल का कोविड वाला दौर।
बिल्कुल,
सरकारों ने जो कदम उठाए उनमें कहीं ना कहीं कीन्स की छाप दिखी जाती है।
हाँ, तो सवाल ये उठता है कि भाई कीन्स क्या सिर्फ इतिहास की बात है या आज भी हमारी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जरूरी है।
इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, पर पहले थोड़ा लेखक के बारे में बात कर लें, रॉबर्ट स्किडल्सकी।
हाँ, जरूरी है। देखिए, वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं अकादमिक ही नहीं है, वो वॉरविक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो हैं ही, पर साथ में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी रहे हैं।
अच्छा,
तो मतलब उन्हें सिद्धांत और असल दुनिया की राजनीति दोनों की अच्छी समझ है।
हाँ, और उन्होंने केन्स पर तो मतलब दशकों काम किया है। वो जो उनकी 3 वॉल्यूम वाली जीवनी है,
हाँ, वो तो बहुत मशहूर है।
उसे तो मतलब केन्स पर आखिरी शब्द माना जाता है। और ये किताब कीन्स उसी गहरे रिसर्च का एक तरह से निचोड़ है जो आम लोगों के लिए लिखी गई है।
बिल्कुल, और स्किडल्सकी की खूबी यही है कि वो कीन्स जैसे थोड़े मुश्किल विचारक को भी उनके ज़माने के हिसाब से समझाते हैं। वो विश्व युद्ध, वो महामंदी का दौर, और बहुत साफ तरीके से समझाते हैं।
वो कीन्स को सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट की तरह नहीं देखते ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उन्हें एक दार्शनिक, एक नैतिक विचारक भी मानते हैं। स्किडल्सकी का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि कीन्स भी ये सब इसलिए नहीं किया कि उन्हें कोई नया सिद्धांत बनाना था,
अच्छा,
बल्कि इसलिए कि वो जो उदार पूंजीवादी सभ्यता थी उसे उसकी अपनी ही मतलब खुद को तबाह करने वाली आदतों से बचाना चाहते थे।
तो ये किताब सिर्फ इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलों के बारे में नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। स्किडल्सकी के मुताबिक कीन्स का मानना था कि ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, वो अपने आप हमेशा सही नतीजे नहीं देती, खासकर सबको रोजगार देने और स्थिरता बनाए रखने में वो अक्सर फेल हो जाती है।
तो किताब इसी के इर्द गिर्द है कि ये फेल क्यों होती है और फिर इसका हल क्या है?
हाँ, बिल्कुल, और स्किडल्सकी कीन्स के हवाले से जो जवाब देते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं, जड़ है भविष्य की अनिश्चितता।
अनिश्चितता मतलब रिस्क?
नहीं, रिस्क से अलग, ये वो वाली अनिश्चितता है जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मतलब कोई गणितीय हिसाब नहीं लगा सकते कि 10 साल बाद क्या होगा, युद्ध होगा या नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी, ये रिस्क नहीं है, ये फंडामेंटल अनसर्टिनिटी है।
अच्छा,
और यही अनिश्चितता, ये डर लोगों को कंपनियों को खर्च करने से, निवेश करने से रोकता है, और फिर बेरोजगारी बढ़ती है।
यानी भविष्य का डर इकोनॉमी को ब्रेक लगा देता है। तो फिर कीन्स का हल क्या था? पूंजीवाद खत्म कर दो?
नहीं, स्किडल्सकी इस पर बहुत जोर देते हैं। कीन्स पूंजीवाद खत्म नहीं करना चाहते थे, उसे सुधारना चाहते थे। उनका हल था सरकार का दखल।
सरकार का दखल?
हाँ, कि सरकार एक बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करे, खासकर मंदी के टाइम, जब निजी निवेश ठंडा पड़ जाए तो सरकार खर्च करके डिमांड बनाए रखे। वो पूंजीवाद को बचाने वाले थे, उसके दुश्मन नहीं।
चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। स्किडल्सकी कीन्स के विचारों की जड़ों तक जाते हैं ना, उनके फिलोसॉफिकल बेस तक।
हाँ, बिल्कुल, और ये जानना बड़ा जरूरी है कि अर्थशास्त्र में आने से पहले कीन्स ने प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के सिद्धांत पर काम किया था।
अच्छा,
और वहीं उन्होंने जोखिम, रिस्क और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के बीच वो फर्क साफ किया था। जोखिम, जिसका आप हिसाब लगा सकते हैं, जैसे पासा फेंकने पर क्या आएगा, और अनिश्चितता, जिसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते, भविष्य का कोई पक्का अनुमान नहीं लगा सकते।
तो इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन बना?
बहुत गहरा कनेक्शन। अगर भविष्य अनिश्चित है तो वो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानती थी कि इंसान हमेशा सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ फैसला लेता है,
हाँ,
वो रैशनल इकोनॉमिक मैन,
हाँ,
वो मॉडल तो फिर टिक नहीं सकता। कीन्स ने कहा कि लंबे समय के फैसले, जैसे निवेश करना है या नहीं, वो गणित पर कम और उम्मीद, भरोसे या डर जैसी भावनाओं पर ज्यादा टिके होते हैं।
और इसी को उन्होंने वो नाम दिया था।
हाँ, वही मशहूर पशु प्रवृत्ति, एनिमल स्पिरिट्स।
एनिमल स्पिरिट्स मतलब हमारी अंदरूनी भावनाएं अर्थव्यवस्था चलाती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है।
हाँ, पर सोचिए, जब माहौल अच्छा होता है, लोग आशावादी होते हैं, तो वो पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं,
इकोनॉमी दौड़ने लगती है।
बिल्कुल, और जब डर या अनिश्चितता होती है तो यही एनिमल स्पिरिट्स ठंडी पड़ जाती हैं, लोग पैसा रोक लेते हैं, कंपनियां निवेश टाल देती हैं
और मंदी आ जाती है.
एग्जैक्टली. तो कीन्स के हिसाब से अर्थव्यवस्था में ये उतार चढ़ाव आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये इंसानी मनोविज्ञान से जुड़ा है.
ये उस जमाने की सोच से तो बहुत अलग रहा होगा. तब क्या मानते थे अर्थशास्त्री?
हाँ, उस वक्त तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बोलबाला था. उनका एक मेन आइडिया था से का नियम.
से का नियम? ये क्या था?
मोटा मोटा मतलब ये कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद बना लेती है, यानी अगर आप कुछ बना रहे हैं तो वो बिक ही जाएगा. अर्थव्यवस्था एक मशीन है जो हमेशा खुद बखुद ठीक हो जाती है.
और बेरोजगारी?
वो मानते थे कि बेरोजगारी बस थोड़ी देर की बात है, अगर लोग कम मजदूरी पर राजी हो जाएं तो सबको काम मिल जाएगा.
लेकिन 1930 वाली महामंदी ने तो इस थ्योरी की हवा निकाल दी होगी.
बुरी तरह से. करोड़ों लोग सालों तक बेरोजगार बैठे रहे, बाजार खुद को ठीक कर ही नहीं पाया. और बस यहीं पर कीन्स अपनी वो जबरदस्त किताब लेकर आए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में.
हाँ, ये किताब तो गेम चेंजर मानी जाती है. स्किडल्स की इसके किन आइडियाज पर जोर देते हैं?
सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया, प्रभावी मांग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड. कीन्स ने से के नियम को सिर के बल खड़ा कर दिया.
कैसे?
उन्होंने कहा, भाई सप्लाई डिमांड नहीं बनाती, डिमांड सप्लाई बनवाती है. मतलब अर्थव्यवस्था में कितना प्रोडक्शन होगा, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कुल मिलाकर खर्च कितना हो रहा है.
कुल खर्च मतलब?
मतलब लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन, कंपनियां कितना निवेश कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट, और सरकार कितना खर्च कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इन तीनों को मिला के बनती है समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड.
अच्छा.
कीन्स ने देखा कि लोगों का खर्च, कंजम्पशन तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत स्थिर रहता है, लेकिन ये जो निवेश है ना, ये बहुत ऊपर नीचे होता है.
क्यों? वही अनिश्चितता और एनिमल स्पिरिट्स की वजह से.
हाँ बिल्कुल. भविष्य का भरोसा नहीं तो कंपनियां निवेश रोक लेती हैं. और इसी से जुड़ा एक और बड़ा अजीब सा आइडिया है.
कौन सा?
बचत का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. सोचिए, अगर मंदी है तो एक आदमी के लिए ज्यादा पैसे बचाना समझदारी है ना?
हाँ बिल्कुल, मुश्किल वक्त के लिए.
पर कीन्स ने दिखाया कि अगर सब लोग यही करने लगें, सब बचत करें और खर्च एकदम कम कर दें, तो क्या होगा?
तो डिमांड और कम हो जाएगी.
एग्जैक्टली. डिमांड और गिरेगी, मंदी और गहरी होगी, और क्योंकि लोगों की कमाई कम हो जाएगी तो आखिर में शायद कुल बचत भी कम ही हो पाएगी. मतलब जो एक के लिए अच्छा है वो सबके लिए बुरा साबित हो सकता है.
बाप रे, ये तो सच में विरोधाभास है. तो फिर सरकार क्या करे?
यहीं सरकार का रोल आता है. कीन्स ने दिया गुणक, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट.
मल्टीप्लायर यानी गुणा करने वाला?
हाँ, कुछ वैसा ही. इसका मतलब है कि अगर सरकार कुछ पैसा खर्च करती है, मान लीजिए सड़क बनाने पर 100 रुपए, तो इकोनॉमी में उसका असर 100 रुपए से कहीं ज्यादा होता है.
वो कैसे?
देखिए, सरकार ने 100 रुपए खर्च किए, वो पैसा मजदूरों, सप्लायरों के पास गया, उन्होंने उसमें से मान लीजिए 80 रुपए आगे खर्च कर दिए, वो 80 रुपए किसी और की कमाई बने, उसने उसमें से 60 रुपए खर्च किए, और ये सिलसिला चलता रहता है.
अच्छा, मतलब पैसा घूमता रहता है और इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ाता है.
बिल्कुल. वो शुरुआती 100 रुपए का खर्च शायद इकोनॉमी में 200, 300 या उससे भी ज्यादा की कुल मांग पैदा कर सकता है. इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं.
तो मंदी में सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए?
हाँ, कीन्स का यही नुस्खा था, खासकर तब जब सिर्फ ब्याज दरें कम करने से बात न बन रही हो.
ब्याज दरें कम करना क्यों काफी नहीं होगा?
कीन्स ने से कहा तरलता वरीयता, लिक्विडिटी प्रेफरेंस. उनका मानना था कि जब बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो, डर का माहौल हो, तो लोग और बैंक कैश पैसा अपने पास रखना ज्यादा पसंद करते हैं,
निवेश करने के बजाय.
हाँ, चाहे ब्याज दरें कितनी भी कम क्यों ना हो, वो सोचते हैं भाई कैश रखो, पता नहीं कल क्या हो जाए. इसे लिक्विडिटी ट्रैप भी कहते हैं. ऐसे में आप ब्याज दरें घटाते रहो, लोग कर्ज लेकर निवेश नहीं करेंगे, तब सरकार को खुद आगे आके खर्च करना पड़ता है, डिमांड बनानी पड़ती है.
तो क्या कीन्स सरकार को पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल देना चाहते थे? मतलब एक तरह से समाजवाद?
नहीं, ये बहुत कॉमन गलतफहमी है. स्किडल्स की इस पर बहुत जोर देते हैं. कीन्स समाजवादी नहीं थे, वो प्राइवेट बिजनेस, बाजार, इन सबको बनाए रखना चाहते थे.
तो फिर वो जो निवेश का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, उसका क्या मतलब था?
उसका मतलब ये नहीं था कि सरकार सारी फैक्ट्रियां अपने कब्जे में ले ले. नहीं, उसका मतलब था कि सरकार अपनी टैक्स और खर्च की नीतियों से इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट के लेवल को मैनेज करे.
अच्छा, मतलब ओवरऑल निवेश कम न होने पाए.
हाँ, ताकि पूर्ण रोजगार बना रहे. वो बस बाजार की जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाने की आदत है उसे कंट्रोल करना चाहते थे.
सरकार का रोल एक स्टेबलाइजर का था, मालिक का नहीं.
हाँ, उनका लक्ष्य पूंजीवाद को ज्यादा स्थिर और ज्यादा मानवीय बनाना था।
तो उनकी विरासत क्या रही? दुनिया ने उनके विचारों को अपनाया?
हाँ, जबरदस्त असर हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया बनी उसमें कीन्स को बड़ा प्रभाव था। वो जो ब्रेटन वुड सिस्टम बना जिसने IMF और वर्ल्ड बैंक को जन्म दिया।
हाँ हाँ, वो काफी हद तक कीन्स के आइडियाज पर ही आधारित था। मकसद था कि दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। और 1945 से लेकर 70 के दशक तक का जो दौर था ना,
हाँ,
पश्चिमी देशों में,
उसे गोल्डन एज कहते हैं शायद।
हाँ, कीन्जियन स्वर्ण युग। खूब आर्थिक तरक्की हुई और बेरोजगारी लगभग खत्म हो गई थी।
लेकिन फिर 70 के दशक में कुछ गड़बड़ हुई।
हाँ, तब वो स्टैगफ्लेशन आ गया, मतलब महंगाई भी बढ़ रही थी और बेरोजगारी भी। ये कीन्स के मॉडल के लिए एक पहेली थी।
तब उनके विचारों पर सवाल उठने लगे।
बिल्कुल। फिर मिल्टन फ्रीडमैन जैसे जो फ्री मार्केट वाले अर्थशास्त्री थे, उनका जोर बढ़ा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई।
2008 में फिर कीन्स की वापसी हुई।
हाँ, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने कीन्स को फिर से हीरो बना दिया। दुनिया भर की सरकारों ने इकोनॉमी को बचाने के लिए भारी सरकारी खर्च किया, स्टिमुलस पैकेज दिए। वो सीधे सीधे कीन्स वाला ही आइडिया था।
तो ऐसा लगता है कि कीन्स के विचार मतलब संकट के समय ज्यादा याद आते हैं। कुछ हद तक सही है। और ये दिखाता है कि जिन बुनियादी मुश्किलों से कीन्स ने लड़ने की कोशिश की थी, बेरोजगारी, अस्थिरता, सरकार का क्या रोल हो, वो आज भी हमारे सामने हैं।
कीन्स के कुछ कोट्स भी बड़े मशहूर हैं ना, स्किडल्सकी ने जिक्र किया है।
हाँ, कई हैं। सबसे फेमस तो शायद वही है, दीर्घकाल में हम सब मर चुके होते हैं।
इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड।
हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है कि भविष्य की चिंता मत करो?
नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। कीन्स ये कह रहे थे कि अर्थशास्त्री सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अरे भाई लंबे समय में सब ठीक हो जाएगा।
अच्छा।
उनका काम है आज की तकलीफ जैसे बेरोजगारी, उसका तुरंत हल निकालना। लोगों को लंबे समय तक दुख झेलने के लिए नहीं छोड़ सकते। आज क्या हो रहा है वो जरूरी है।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और कोई?
एक और जो मुझे बहुत सही लगता है, कठिनाई नए विचारों को विकसित करने में उतनी नहीं है जितनी पुराने विचारों से बचने में है।
हाँ, ये बात तो गहरी है। मतलब नई चीज सोचना उतना मुश्किल नहीं जितना पुरानी सोच के चुंगल से निकलना। लोग पुरानी बातों के इतने आदी हो जाते हैं कि नई बात हजम ही नहीं होती। कीन्स को खुद ये लड़ाई लड़नी पड़ी थी।
ये बात तो खैर आज भी लागू होती है। अच्छा, ये सारे जो विचार हैं, इनका आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारी सोच के लिए क्या मतलब है?
देखिए, कई मतलब निकलते हैं। एक तो ये हमें आजकल की आर्थिक बहसों को समझने में मदद करते हैं। जब टीवी पर एक्सपर्ट्स बहस करते हैं कि सरकार खर्च बढ़ाए या घटाए,
हाँ, स्टिमुलस या ऑस्टेरिटी वाली बहस,
हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कीन्स वाली सोच कहाँ फिट होती है, इन अलग अलग रास्तों के क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं।
और पर्सनल लेवल पर क्या यह हमें कुछ सिखाता है?
हाँ, निवेश वगैरह के बारे में सोचने में मदद मिलती है। वो जो एनिमल स्पिरिट्स और अनिश्चितता वाली बात है ना, वो हमें याद दिलाती है कि शेयर मार्केट हो या प्रॉपर्टी, ये सब हमेशा लॉजिक से नहीं चलते। इसमें लोगों का मूड, डर, उम्मीद, इन सब का बड़ा रोल होता है।
तो मतलब बाजार के उतार चढ़ाव को हम बेहतर समझ सकते हैं।
हाँ, और शायद अपने पैसों के फैसले लेते वक्त थोड़े ज्यादा सावधान और यथार्थवादी रह सकते हैं। एकदम से बहक नहीं जाना चाहिए।
और ये हमें शायद इकोनॉमिक्स की खबरों को थोड़ा शक की नजर से देखना भी सिखाता है।
बिल्कुल। कोई भी ये कहे कि फ्री मार्केट ही हमेशा बेस्ट है या सरकार को अपना बजट हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, तो मैं सोचना चाहिए कि क्या ये हमेशा सच है? क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है?
आर्थिक सिद्धांत कोई भगवान के शब्द नहीं है, वो इंसानों के बनाए विचार है।
सही बात है।
ये हमें आर्थिक नीतियों के पीछे के इरादों पर, उनके नतीजों पर सवाल पूछने के लिए तैयार करता है।
तो अगर पूरी बातचीत को समेटें तो स्किडेल्सकी की इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कीन्स ने इकोनॉमिक्स में इंसानियत वापस डाली। उन्होंने इसे सिर्फ नंबर गेम नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र का मकसद लोगों की भलाई है, एक सभ्य समाज बनाना है। हाँ, वो बेरोजगारी को सिर्फ एक आंकड़ा नहीं मानते थे।
बिल्कुल, उसे वो एक बड़ी बुराई मानते थे। उन्होंने दिखाया कि आर्थिक नीतियां बनाते वक्त हमें सिर्फ मुनाफे या ग्रोथ के बारे में नहीं, बल्कि इंसाफ और लोगों की जिंदगी के बारे में भी सोचना होगा। बाजार हमारे लिए है, हम बाजार के लिए नहीं।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा दिमाग में बैठी वो है वो अनिश्चितता वाली बात। ये मानना कि हम भविष्य के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते और हमें इसी अनिश्चितता के साथ फैसले लेने हैं, नीतियां बनानी है। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना, और शायद ये भी सिखाता है कि आर्थिक समस्याओं के कोई बने बनाए हमेशा काम करने वाले फॉर्मूले नहीं होते। हमें सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ता है।
हाँ बिल्कुल, कठोर सिद्धांतों के बजाय प्रैक्टिकल हल खोजने पर जोर।
और शायद एक सवाल जो ये किताब आज के लिए छोड़ जाती है,
क्या?
कि आज की दुनिया में जहाँ इतनी नई चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया में इतनी उथल पुथल है, वहां व्यक्ति, बाजार और सरकार के बीच सही रिश्ता क्या होना चाहिए? कीन्स ने अपने जमाने का जवाब दिया, हमें आज का जवाब खोजना होगा।
बिल्कुल सही, ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।